सभी को भट्टी में आके आनंद तो आ ही गया, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि यहां से क्या सीख कर जा रहे हैं, ताकि जैसे आए थे वैसे वापिस नहीं जाएं। आपके परिवार वाले आपको देखें और आपके परिवर्तन को देखकर खुद को बदलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। क्लासेस तो आपने बहुत सुनी हैं, मैं कुछ खुली बात माताओं को कहना चाहता हूं। सुनेंगी खुली बात, सीधी बात, घुमा फिरा कर नहीं। आपको पसंद हो तो सुनाऊं, पसंद है ना? क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है। लगता है आपको कि बदल रहा है? बोलो। कई सोचते हैं संगम युग तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चलने से तो हमारी स्थिति कब संपूर्ण बनेगी, सतयुग आएगा भी या नहीं आएगा। बाबा की कुछ बहुत सुंदर बातें साकार मूल्यों में आती रही हैं, वो बहुत गहरी हैं। साकार मूल्य कोई मोटी मूल्य नहीं है, बहुत गहरा ज्ञान उनमें है। तो बाबा कह आए थे सबसे 55 साल पहले, मैं तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान देकर शांत हो जाता हूं। अब हम सब देख रहे हैं बाबा तो 2 साल से शांति है, आए भी तो कुछ ज्यादा मुरलियां तो नहीं चली, प्यार दिया केवल। उसने हमें अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। अब बाबा हम सबसे तैयारी कराता है, जिस चीज के लिए तुम यहां आए हो, जो कुछ बाबा से प्राप्त करना चाहते हो वो अब कर लो। समय अब तेजी से बदलेगा। मुझे तो बहुत क्लियर फीलिंग है 2020 बीतते यज्ञ का स्वरूप भी बदल जाएगा, ये समय तेजी से बदलने लगेगा, तेज गति हो जाएगी समय की। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, बहने हो या भाई हो, हम सभी ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है कि हम जहां कहीं भी उलझे हों उससे मुक्त होकर अच्छी तपस्या में लग जाएं। जहां भी हमने डालियां पकड़ी हों उन्हें छोड़ने का समय है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो समय हमें विवश करेगा, छुड़ा देगा, और तब आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए पहली बात जो मैं सभी बहनों को कहना चाहता हूं, भाइयों के लिए भी है, कहीं भी अपने को उलझाओ नहीं। आप में से ही कई माताएं हैं जो यहां बैठी हैं जिन्होंने अपने को मुक्त कर लिया है। मुक्त का अर्थ घर छोड़ने से नहीं, मुक्त का अर्थ उन संकल्पों से मुक्त, उन बिना मतलब के बंधनों से मुक्त जो हमें पक्षी तपस्या नहीं करने देते। संगम युग पर भगवान से मिलन का सुख बहुत बड़ा, जो किसी युग में नहीं प्राप्त होगा, सतयुगों के सुखों से भी बहुत बड़ा सुख ये इस समय प्रभु मिलन का सुख है। हम इसे प्राप्त करने को अपना लक्ष्य बनाएं। टॉपिक बहुत अच्छा है, संस्कार परिवर्तन और संस्कार मिलन। बहुत अच्छी अच्छी क्लास इस पे हो सकती हैं। आप सभी अपने परिवारों में रहती हैं, किसी किसी माता के संस्कार अपने पति से भी नहीं मिल पाए, 40 साल हो गए मैरिड लाइफ को, 40 साल में संस्कार नहीं मिले। अनेक माताओं के संस्कार अपनी पुत्र वधुओं से नहीं मिल पाए, घर में बहुएं आई उनसे नहीं मिल पाए, बच्चों से नहीं मिल पाए। और मनुष्य हमेशा ये सोचता है, आप भी और सभी भाई भी, दूसरा बदले, सोचता है या नहीं, ये बदले। ये व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, ये शांत हो जाए तो हमारे घर में संपूर्ण शांति आ जाए। अब बात तो ठीक है, आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है, ये तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति नहीं बदलता, ज्ञानियों का ही क्रोध नहीं छूटता तो अज्ञानियों का कहां से छूटेगा। तो हमें क्या करना है, अपनी शांति की शक्ति से उन्हें पवित्र भोजन खिलाकर, उन्हें सुभावनाएं देकर, अच्छी अच्छी बातें सिखाकर उनको शांत करना है। अब समय ये है, बाबा कभी कहा करते थे, मुझे वो बात याद है, कि अब तुम केवल अपने भी कर्म विनाश करने के लिए मेहनत कर रहे हो, ऐसा समय आएगा तुम्हें दूसरों के भी विकर्म विनाश करने होंगे। समय चल रहा है, ऐसा समय आएगा तुम्हें अपने शरीर को भी वाइब्रेशंस देने होंगे। बहुत सुंदर बात है ये, अपनी बीमारियों से मुक्त होने के लिए अपने शरीर को भी वाइब्रेशंस देना, अपने लिए भी शुभ भावनाएं रखना, ये बहुत आवश्यक है। तो संस्कार मिलाने के लिए पहली चीज, हमें झुक कर चलना पड़ेगा। जो झुकेगा वही तो दूसरों को उठा सकेगा। आपको बच्चे को उठाना पड़ता है, झुकते हैं ना। झुकना महानता है, झुकना कमजोरी नहीं। कई कहते हैं हम ही झुकते आए हैं जीवन भर, सदा ही झुकते रहेंगे क्या, इनको भी तो झुकना चाहिए। बात तो ठीक है, सदा ही झुकने से तो कमर भी दुखने लगेगी ना, सदा ही झुकने से तो मनुष्य कमजोर भी हो जाएगा। लेकिन झुकने के साथ, निरहंकारी बनने के साथ स्वमानधारी भी बनना होगा। अगर स्वमान के बिना हम झुकते हैं तो हमारा झुकना कहीं कहीं हमारी कमजोरी भी बन जाता है। यही बात सहनशीलता के लिए है। कई माताएं बहुत सहनशील होती हैं, लेकिन कई बार लोग आपकी सहनशीलता को आपकी कमजोरी मान लेते हैं, दबाव बनाए रखते हैं, परेशान करते रहते हैं। इसमें भी आपको स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। सभी बहनें ध्यान से सुन लें, भाई भी जो थोड़े बैठे हैं सुन लें। दो चीजें बहुत सुंदर हैं, सिंपल और बहुत सुंदर। जितने देह से न्यारे उतने ही सबके प्यारे। प्यार तो सबको चाहिए, आप बुजुर्ग माता भी हैं, प्यार तो आपको भी चाहिए। लोग बुजुर्गों से प्यार की कामना ही करते, उन्हें प्यार देते नहीं हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए। देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करते रहो, सबका प्यार आपके ऊपर बरसता रहेगा, आप में प्यार की शक्ति आ जाएगी। और छोटी सी प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, इतना ही, लंबी चौड़ी बात भी नहीं। मैं ये हूं, ये नहीं हूं, सिंपल है ना। मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, लेकिन जरूरत है बहुत ज्यादा धुन लगाने की। एक बार अभ्यास कर लिया उससे काम नहीं चलेगा, धुन लगानी है। कुछ दिन के लिए इसकी बहुत प्रैक्टिस कर जाओ, सबका प्यार आपको मिलेगा। जो विरोध करते हैं वो प्यार करने लगेंगे। दूसरी बात, जो जितना स्वमान में रहते हैं उन्हें उतना ज्यादा सम्मान मिलता है। नोट कर लो, बुद्धि में भी नोट कर लेना। सम्मान आपको नहीं मिल रहा है, समाज वाले आपको सम्मान नहीं देते कि पता नहीं कहां चली गई ओम शांति में, कुछ कुछ बोलते हैं। स्वमान का अभ्यास करके देखो, मैं इष्ट देवी हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, संसार के सभी लोगों से अधिक भाग्यवान हूं। देखो क्या होता है, चमत्कार देखना इसका, आपको खुद पता चलेगा लोग किस तरह आपको सम्मान दे रहे हैं। बाबा ने बहुत गहरी बात कही थी कभी, तुम इस देव देवियां हो, तुम्हारे मंदिरों में देखो, दरवाजा बंद रहता है ना मंदिरों का, फिर खुलेगा। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी जड़ मूर्तियों को सम्मान देने के लिए भक्त कितना इंतजार करते हैं, तुम वही हो। स्वमान में आ जाएं, सम्मान मिलेगा। तो हमें दूसरों के संस्कारों से टकराना नहीं है। बैल आपको मारने आ रहा हो, आजकल तो बैल रहे नहीं है, हट जाते हैं ना। गाड़ी सामने से आ रही हो, कार, हट जाएंगे ना। कभी कभी रास्ता बदल देना भी कल्याणकारी होता है, कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है, और कभी बोलना अच्छा होता है। अपनी स्थिति को चेक करें। मैं एक संकल्प दे रहा हूं सभी माताओं को विशेष, किसी का आना अच्छा लगता है और किसी का जाना, समझ गए ना। कोई आपके घर में आ गया, सोचते हैं जल्दी जाए, किसी का आना अच्छा लगता है, आ जाए बस। अभी अभी एक जगह मैंने ये क्लास में बात सुनाई, सभा बड़ी थी वहां भी सेंटर में, एसपी भी आया हुआ था, पुलिस का एसपी, बोलने लगा, माइक दिया उसको, कहा कि भाई बात तो ठीक है, किसी का जाना अच्छा लगता है, किसी का आना, हमारा आना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, सोचते हैं पुलिस वाले तो भागे यहां से जल्दी जाएं, हम क्या करें। मैंने कहा आपका तो ये कर्तव्य है, आपसे लोग डरेंगे तभी तो पाप से डरेंगे। तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है किसी से भी टकराव ना हो। दूसरी विधि है सरल जीवन, सहज स्वभाव, इजी नेचर। जिसकी नेचर सरल होती है टकराव का प्रश्न ही नहीं होता। कई बहने होंगी आप में से जो कभी नहीं टकराते, तुम गाली देकर चले गए खुश रहो, आशीर्वाद दे देती हैं, हम तो खुश हैं तुम भी खुश रहो। अपने विचारों को थोड़ा विशाल बनाएंगे, उदारता, छोटी बातों में ना झुक नहीं। मुझे जो कुछ आपको और कहना है वो है अपने संस्कारों को बदलना, समय अनुसार। ज्यादा सोचने का संस्कार देखेंगे सभी अपने अपने को, निगेटिव सोचने का संस्कार, जल्दी ही दुखी हो जाने का संस्कार, जिसको कहते हैं दुख लेना, बात छोटी सी हुई दुखी हो गए। चेक कर लो ये संस्कार तो नहीं है। फीलिंग का संस्कार, अब बड़े संस्कार, क्रोध का संस्कार, बुरा बोलने का संस्कार, बदला लेने का संस्कार। माताओं में होता है या नहीं, या भाइयों में ही होता है बदला लेने का? बोलो, सब में होता है। चित शांत नहीं होता, कोई दो बुरे वचन बोल गया, जब तक चार नहीं बोलेंगे नींद नहीं आएगी। चार बोल दिया आराम से सो गए, फोन पे डांट दिया बस सुख से सो गए। इन संस्कारों को बदलना है, बुरा बोलने का संस्कार। अगर किसी में हो तो एक संस्कार बदलना। कई माताएं दूसरों को श्राप देती रहती हैं, तेरा भाई मर जाएगा। आपके कहने से तो नहीं मरेगा। दूसरी माता दुखी हो जाती है, क्या कहा इसने, वो भी शुरू करती है, मेरा नहीं, मेरा एक मरे तुम्हारा दो मरेंगे। माताओं को तो दुआएं देनी हैं। अब आप माताएं थोड़ा ही हो, इष्ट देवियां हो, शिव शक्तियां हो, इस मातापने से ऊपर उठ जाओ। लोगों ने तो आपको जगत माता कहा होगा, मैं कह रहा हूं इष्ट देवी बन जाओ। महान बनना है। क्रोध का संस्कार जिसमें भी हो, मैं पहले तो पूछना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी होती है जानकर कि बाबा के बहुत सारे बच्चों ने अपना क्रोध छोड़ दिया है, बहुत छोड़ दिया है। जिन माताओं ने अपना क्रोध बहुत छोड़ दिया वो हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। देखो ये बाबा की सभा की ब्यूटी है, ताली बजा दो अपने लिए। ऐसी संसार में और कोई सभा नहीं हो सकती जहां 5000 माताओं में से 4000 ने हाथ उठा दिया हो। बहुत सुंदर बात है। आप सबको बाबा इनाम देता है, साथ-साथ देता है। जिनका नहीं छूटा उनको मैं एक छोटी सी विधि बता रहा हूं, 21 दिन कर लेना, क्रोध शांत हो जाएगा। पहली बात तो यही कि अपने क्रोध को छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए, कि अग्नि है, मुझे इस अग्नि में नहीं जलना है। ये बुद्धि को नष्ट करती है, लौकिक में तो कहते हैं खून जलाती है। सवेरे उठते ही संकल्प करना, मैं विजयी रतन हूं, फीलिंग से चल। सवेरे उठते ही पहला संकल्प करना, मैं विजयी रत्न हूं। दूसरा संकल्प, मैं क्रोध मुक्त हूं। और तीसरा संकल्प, मैं आत्मा शांत हूं। जिन माताओं के घरों में गीता पाठशालाएं हैं, वो सबको ये सिखाना, टीचर बहने भी सबको सिखाएं, मैं विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। स्वीकार कराना आत्मा को, मैं शांत। बहुत अच्छी विधि बाबा ने बताई थी। क्रोध के बारे में बहुत मुरलियां चली हैं। एक हंसी की बात आपको बाबा की सुना दूं क्रोध के बारे में। बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा मुझे क्रोध आता नहीं है, दिलाया जाता है, ऐसा आप में से भी बहुत कहेंगे, मुझे क्रोध आता नहीं है, दिलाया जाता है। अब हंसी की बात सुनो, बच्चे कहते हैं बाप को परिस्थिति ऐसी थी, अगर आप भी वहां होते तो आपको भी क्रोध आ जाता। कई कई परिस्थिति होती हैं जरूर, लेकिन धैर्य से क्रोध को जीतना है। एक बहुत अच्छा स्लोगन अपने पास लिख लें सभी बहने, तुम्हारा एक सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। बहुत लोगों के जीवन में हुआ, एक सेकंड के क्रोध के कारण 10 साल जेल में, एक सेकंड का क्रोध पूरा जीवन जेल में, घुसाया गोली मार दी, आजीवन उम्र कैद, वो कैद हो गई। इसलिए अपने क्रोध को, इंग्लिश में कहते हैं इमोशंस को, कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, और ये योग अभ्यास से सहज हो जाता है। बस लक्ष्य बनाना है कि मुझे अपने क्रोध पर पूरी तरह विजय पानी है। जिस दूसरे संस्कार की मैंने बात की आपसे, दुख नहीं लेना है, सभी बहनें विशेष रूप से ध्यान दें, अगर दुख लेने की आदत होगी तो विनाश काल में आपको बहुत कष्ट होगा। इसलिए मैं अपनी महान माताओं को ये कहना चाहता हूं, विनाश काल में मातृशक्ति बहुत कष्ट पाएगी। आपको वाइब्रेशंस देखकर दूसरों के दुख हरने होंगे। मैं बहुत कह रहा हूं सभी को ये बात, और माताएं सभी इस पर बहुत ध्यान दें, हमें दुख देने वाले नहीं, दुख लेने वाले नहीं, दुख हरने वाले बनना है। बोलो किस किस को पसंद है ये काम, दुख हरना होगा सबका। आप देखेंगे बहुत जल्दी अनेक आत्माएं दुखों के भंडार लेकर आपके द्वार पर आएंगी और मुख से बोलेंगी हमारे दुख खत्म करो, हम बहुत दुखी हो गए हैं। आपको अपने में बल भरना है, अभी से मुरली आएगी बाबा की, साकार मुरली ही सुनेंगे आप कुछ दिन में, ऐसा बल भरना है कि दूसरों को दृष्टि दें, उनके दुख खत्म होने लगे। बहुत सुंदर सीन, दुनिया के लिए विनाश लेकिन बाबा के बच्चों के लिए बहुत सुंदर सीन आने वाले हैं। इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करते चलना है। अभी से ध्यान देना, घर में जाते ही किसी भी बात का मुझे दुख तो नहीं होता। और बाबा ये कहते रहे, अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। अभी तो क्या है, किसी ने कुछ कह दिया, फीलिंग आ गई, दुखी हो गए, किसी को कोई बीमारी हो गई, दुखी हो गए, होल सेल मौते होंगी, शहर के शहर जमीन में धस जाएंगे। आज हम किसी से बात कर रहे थे, ऐसा समय आ जाएगा बैंक सारे फेल, दिवाला निकल जाएगा बैंकों का, जो जिसकी प्रॉपर्टी बैंकों में है सब जीरो, तेल मिलेगा नहीं, गाड़ियां नहीं चलेंगी, मोबाइल फोन सबके ठप हो जाएंगे। ये जो युवकों को मोबाइल का क्रेज है ना आजकल, सब बेकार डब्बे रह जाएंगे। 100 रुपए किलो खरीद लो सारे मोबाइल, ऐसा समय आ जाएगा जल्दी ही। ना दूध मिलेगा, पानी की भी कमी हो जाएगी। ऐसे में अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना बस वही काम आएगा। काम आएंगे मनुष्य के पुण्य, काम आएंगे जो आपने भगवान को मदद की है वो बहुत काम आएगी। लोगों को पीने को पानी नहीं मिलेगा, आपकी टंकी फुल रहेगी। लोगों के घर में भोजन नहीं होगा, आपको बाबा खिलाता रहेगा, ये सब होगा। लेकिन बहुत जरूरी है पुण्यों का खाता बढ़ाना। इसके उल्टा जिसका पाप का खाता बढ़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए, जिसका भी पाप का खाता बढ़ा है उसको मानसिक रोग बहुत आएंगे, रात को नींद नहीं आएगी, मानसिक रोग, आप जानते हैं इनको, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, डॉक्टर भी मानसिक रोगी हो जाएंगे, कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए अभी से अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रखना आवश्यक है। बाबा का ये गुह्य महावाक्य अपने पास रख लेना, जिनके पास सर्व शक्तियां होंगी उन्हें समय पर सब कुछ मिलता रहेगा। और जिन्होंने शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं किया, पापों का स्टॉक जमा कर लिया है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी बहनें, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, कहीं भी उलझो नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई माता मेरे से मिलने आई, कहा मैं रोज क्लास नहीं कर पाती, लड़का और उसकी पत्नी नौकरी पर जाती हैं, उनका बच्चा 11 साल का है, वो बहुत बीमार है, मुझे उसको संभालना पड़ता है, मैं मुरली नहीं सुन पाती। मैंने पूछा सेंटर कितनी दूर है, कहा मेरे घर के नीचे ही है। ऊपर वो रहती है, कहा नीचे बाबा, उसके ऊपर मैं। मैंने कहा तो तुम तो बाबा के कंधों पे बैठी हो। मैंने उसको एक बात कही, वो आप सबको कहना चाहता हूं, ठीक है आपको 11 साल के बच्चे की संभाल करनी पड़ती है, एक घंटे के लिए बाबा को दे जाया करो कि तुम संभाल लो जरा, मैं मुरली सुन के आती हूं। बोलो कौन कौन समझते हैं कि बाबा संभालेगा, संभालेगा और हमसे अच्छा संभालेगा। सभी माताओं को सीख लेना है, बाबा अच्छा संभालेगा। मुझे एक सुंदर अनुभव आपको सुनाना है किसी का, बाबा कैसे मदद करता है। और इस बात से आप सभी सीख लेना आज कि केवल मैं नहीं, बाबा को जगह दो। दुबई से कुमार आया, शायद मुंबई की बात है या महाराष्ट्र के किसी शहर की। उसके भाइयों ने सोचा कि ये तो अनमैरिड है, इसको प्रॉपर्टी क्या करनी है, 4 गुंडों को तैयार किया कि इसको मारो। आजकल तो कलयुग का जमाना ऐसा ही है ना, कोई किसी का भाई भाई नहीं होता। उनसे पूछा गुंडों ने, अकेला ही रहता है क्या, कहां घर में अकेला सोता है। उस कुमार ने रात को सोने से पहले बाबा को याद किया और कहा, बाबा मैं अकेला हूं, आप मेरी सुरक्षा करना। उसको पता नहीं था, आप मेरे सुरक्षा करना, आप मेरे साथ रहना। चार गुंडे उसको मारने के लिए आ गए। क्या हुआ, चारों ने देखा गेट पर एक बहुत पावरफुल बूढ़ा पगड़ी बांधे, हाथ में मोटा डंडा लिए खड़ा है, और वो इतना पावरफुल है, दिख तो रहा बूढ़ा है पर इतना पावरफुल है कि ये चारों एक मिनट भी नहीं ठहर सके, सीधे पीछे भाग गए। और उसको जाके कहा, तुमने तो कहा था वो अकेला है, वहां तो एक पावरफुल बूढ़ा पहरा दे रहा था। कौन था वो पावरफुल बूढ़ा? सीख लें सभी, बाबा अपने बच्चों की बहुत संभाल करता है, इसलिए सारे बोझ अपने पर नहीं रखो। माताओं को आदत पड़ गई है सबके बोझ अपने सिर पर, मेरी लड़की की लड़की की लड़की पढ़ती नहीं, मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैंने कहा उसके माँ बाप नहीं सोचते कि वो तो नहीं सोचते, नौकरी पे जाते हैं। तो मैंने कहा सारा सोचने का काम तुम्हें दे दिया नानी को, ये संस्कार है। देख लो सभी माताएं, दुनिया भर का बोझ जो सिर पे रख लिया है आपने, उतारो, अभी उतार के जाओ। सबको अपना अपना बोझ संभालना है, सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब खुद देना होगा, इससे कोई बच नहीं पाएगा। अब समय आ गया है, अब आएगा नहीं समय, आ गया है, चालू है। इसलिए अगर आपको अपने परिवार से सच्चा प्यार है, अपने पोत्रों से सच्चा प्यार है, प्यार रखो, लेकिन उन्हें वाइब्रेशंस दो। अगर आप उनकी चिंता कर रहे हैं, अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो आपसे उनको निगेटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं, उनको मदद नहीं मिल रही है, आपका प्यार खाली जा रहा है, आपका प्यार आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। अपने प्यार को दूसरों को मदद करने में परिवर्तित कर दो, आपका प्यार भी बना रहेगा, दूसरों को मदद होगी, आपका योग बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए सभी बहनें अपने अपने घरों की समस्याओं को योग बल से हल करो, परेशानियों से नहीं, योग बल से हल करो। और माताएं बार बार पूछती हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर आपके परिवार में किसी पर भी विघ्न आ रहे हो, काम धंधों में विघ्न आ रहे हो, आपके बच्चे पोतरे बीमार रहते हो, विघ्न चल रहे हो, काम बनते बनते बिगड़ जाता हो, यह भी विघ्न होता है, बिल्कुल ठीक हो रहा था बिगड़ गया, तो 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी कर लो। अब ध्यान से सुन लेना ताकि आपको पूछना ही ना पड़े, सिखाओ सबको। अब मैं अकेला थोड़ा ही सबको सिखाऊंगा, यहाँ की 5000 माताएं सबको सिखा देना, 5 लाख को सिखा देंगे आप। 1 घंटा पावरफुल योग करना है अमृत वेले के अलावा, ध्यान से सुन लेना, अमृत वेले का योग बाबा के मिलन का, उसका सुख पाने का, उसे शक्तियां लेने का योग है। विघ्न विनाशक योग उसके अलावा जो 23 घंटे बचते हैं उसमें से कभी भी कर लेना। योग पावरफुल होना चाहिए, 21 दिन तक एक भी दिन छूटे नहीं, ये सब है इसमें। छूट गया तो फिर शुरू करना पड़ेगा। कई माताओं को ऐसा भी हुआ है कि कभी 21 दिन पूरे ही नहीं हो पाते, थक गए। टाइम ऐसा रखो, देखो कौन सा अच्छा टाइम है, सवेरे 5 से 6 या 6 से 7, 5:30 से 6:30। ये कभी मिस नहीं होगा आपका, सब सोए रहते हैं, आपको कोई काम नहीं है बाहर का। दो स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। ये स्वमान याद करके फिर 1 घंटा योग कर लेना, आपके विघ्न नष्ट होंगे। ये कई हजार आत्माओं के अनुभव हो गए हैं, 2-4 के नहीं। जिनको नौकरी नहीं मिलती थी नौकरियां मिल गई, काम धंधे नहीं चलते थे वो चलने लगे, बीमारियां बहुत रहती थी वो ठीक हो गए, बच्चे बिगड़ रहे थे वो ठीक हो गए। ये विघ्न चलते हैं संसार में, हर एक के ऊपर आते हैं, परिवारों पर आते हैं, काम धंधों पर आते हैं। इनको आप इस तरह योग बल से समाप्त कर सकते हैं। केवल अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी ये योग भट्टी कर सकते हैं। और अगर मान लो किसी का योग लगता ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई, परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं, तो आप सवेरे उठते ही 21 बार लिख दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। लिखने से एकाग्रता हो जाएगी, वैसे याद करेंगे तो भी मन भटक जाएगा। तो हमें अपने संस्कारों को बदलना है। मैंने शुरू में आपको 2 बातें कही, ज्यादा सोचने की आदत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके परिवारों में, आपके जीवन में जो बातें आती हैं वो बड़ी नहीं होती। बाबा के सुंदर बोल हैं, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। सभी बहनें ध्यान दें, जिसमें भी ये आदत हो, सब में नहीं होती, ध्यान दें, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। भगवान वाच है, विचार करो, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो हम हैं। जैसे किसी के पास 10 करोड़ रुपए हो और उसके 100 रुपए खो गए, तो क्या वो व्यक्ति 100 रुपए ढूंढने में 2-4 घंटे लगाएगा? बोलो, लगाएगा? बिल्कुल नहीं। 100 रुपए खो गए, कोई बात नहीं। हम भी ध्यान से सुनेंगे और पक्का करो, हमारी स्थिति करोड़ों रुपए की है और बातें 10-20 रुपए की हैं। हम छोटी बातों के कारण, जिनका मूल्य नहीं है, अपनी अनमोल स्थिति को गिराएंगे नहीं। संकल्प करें सभी, हमारी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा योग प्रकृति को बदलता है, चांद तारों को बदलता है, पेड़ पौधों को बदलता है, और हम छोटी बातों में लगे हों। एक जिम्मेदार व्यक्ति क्या छोटी बातों में लगता है? अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हमें संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। आप कल्पना करो उस दिन की, उन दिनों की, जब संसार में त्राही त्राही मचने लगेगी, जब रोज करोड़ों लोग मरा करेंगे, जब शहर के शहर, देश के देश सागर में समा जाएंगे, संसार में दुखों के जैसे के तूफान चलने लगेंगे। ऐसे में बाबा ने कह दिया है, मैं अपने बच्चों को साक्षात्कार में इतना मगन कर दूंगा कि पता ही नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। लेकिन ये किनको होगा? जिन्होंने अपनी स्थिति को सुंदर बनाया होगा। इसलिए सभी से मैं कहूंगा, अपने को समय दो। मैं तो माताओं को एक बात कहा करता था, और बहुत माताओं ने अपना ही वो भक्ति में आप सभी व्रत रखती थी, याद करो जिस दिन व्रत होता था वो दिन और दिनों से कितना सुंदर होता था, मन शांत रहता था। हफ्ते में एक दिन व्रत रख लिया करो, भोजन भी कम खाओ, व्रत रखो तो बहुत अच्छा, भोजन भी बचेगा, पेट भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर तो कहते हैं एक दिन व्रत रखना, फास्ट रखना बहुत अच्छा होता है, और सवेरे से शाम तक अच्छा योग करने का लक्ष्य बना लो। तीन चार बार बैठ जाओ योग में, देखो आपके बच्चे, आपका परिवार आपका कितना सम्मान करेगा, और चारों ओर वाइब्रेशंस आपके घर में कितने अच्छे हो जाएंगे। लोग आएंगे आपके घर में शांति प्राप्त करने के लिए। शांति देनी है सबको। देखो भारत में एक चीज थी, अब तो नहीं रही है, हम जब छोटे थे तो बहुत होता था, दिन में कई साधु फकीर मांगने आते थे ना, अब आते हैं या नहीं? अब कहीं कहीं आते होंगे, गांव में तो रोज 10-15 आ ही जाते थे, और माताओं का संकल्प होता था हमारे घर से कोई भी साधु खाली हाथ न जाए, होता था या नहीं? अब आपके घरों में शांति के भिखारी आएंगे, अब सोच लो उन्हें खाली हाथ भेजेंगे या गुणगान करते हुए आपके घर से जाएं? समय तेजी से बदलेगा, इसलिए अपने को समय देना है। 15-15 मिनट तीन बार योग में बैठो अपने घर में, सवेरे उठकर योग करो, इसको महत्व दो। यही सुखी जीवन जीने की विधि है, अपने परिवार को अच्छा रखने की विधि केवल योग अभ्यास है। इसलिए टाइम सबके पास है, व्यर्थ को छोड़कर बैठना है योग में। बोलो पसंद है ये बात? अगर आप ऐसा कर लें, आपके घर निर्विघ्न बन जाएंगे, आपके घर मंदिर बन जाएंगे, क्योंकि बाबा को इस भारत को विश्व गुरु बनाना है और मधुवन को संसार का महान तीर्थ। जहां अब हम बैठे हैं ये संसार के महान तीर्थ बन जाएंगे। ऊपर की दोनों बाबा के बड़े घर महान तीर्थ बनेंगे। और मैं तो ये कहूंगा, आप अपने अपने घरों को भी तीर्थ बना दो। इससे भी अच्छी बात, अपने अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बना दो। ये बनेगा अपने श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ स्मृतियों से। अगर आप अपने घर में इस स्मृति में रहेंगी, मैं इष्ट देवी हूँ, आपका जीवन तीर्थ बन जाएगा। मैं एक महान आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। तो जब घर घर भारत का तीर्थ बन जाएगा तो भारत संसार के लिए लाइट हाउस महान तीर्थ बन जाएगा। आप सब यहाँ आए, बहुत अच्छा किया। चार झोकर जाएंगे, जो मैंने थोड़े से संस्कारों की चर्चा की उनमें से कोई एक बदल देना। मेरी तो ये इच्छा है, दुख लेने का संस्कार, दुखी होने का संस्कार किसी में न रहे। उठो मुस्कुराते हुए, सो मुस्कुराते हुए, आपका भाग्य मुस्कुराने लगेगा। ओम शांति।